हरे
हरे
रामा,
रामा हरे रामा
राम राम हरे हरे।
राम रामा हरे हरे।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो आज के इस शनिवार के दिन 17 फरवरी को मध्याह्न के समय आपका ऊंचा गांव में स्वागत है। ऊंचा गांव ललिता देवी का गांव है। अब कंफर्टेबल हो, पीछे बैठो। ललिता सखी का गांव है और ललिता सखी राधा रानी की प्रधान सखी सखी है। जय हो गो माता की, जय हो। राधे राधे। गांव को आनंद है ये। रिपोर्ट राधा रानी की 8 सखियां हैं, उसमें प्रधान सखी जो है वो ललिता देवी है। उनके पिताजी का नाम महाभानु है, दूसरा नाम अशोक भी है, अशोक महागोप, और उनकी पत्नी का नाम है शारदा देवी, और दोनों का घर उस पर्वत पर है, उसका नाम है अटोर पर्वत, पीछे है, आपको बाद में दिखाई पड़ेगा। और उसका नाम अशोक पर्वत भी है, अटोर पर्वत भी है, और वहाँ पर राधा रानी की सखी ललिता देवी का घर है, पिताजी का माता जी का घर है। और हम देह कुंड के किनारे बैठे हुए हैं, ये देह कुंड है, यहाँ देह बिहारी जी का मंदिर है। बहुत सुंदर जगह है ये, बहुत सुंदर स्थान है, पवित्र स्थान है, और इसमें कई पवित्र स्थलियाँ हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा मेरी क्षमता के अनुसार। सब ब्रजवासी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये आशीर्वाद से कुछ प्रयास करूंगा। ये अटोर पर्वत है और उसके आगे सखी गिरी है, ये सब ललिता जी का साम्राज्य है। तो ये यहाँ पर ललिता जी का जन्म हुआ था, और ललिता जी का विवाह भी कृष्ण के साथ यहाँ हुआ था सखी गिरी पर। नारायण भट्ट जी के कथनानुसार सभी सखियों का विवाह विवाह ऊंचे गांव में हुआ है। वहाँ पर एक झूला है ऊपर पहाड़ पर, वहाँ पर ललिता जी और राधा रानी, ललिता जी और श्री कृष्ण भगवान झूला झूले हैं, और सखियाँ भी झूला झूले हैं। वो झूलन स्थली है ऊपर पहाड़ पे। साथ में पहाड़ पर जब भी सब सखियों का विवाह हुआ कृष्ण जी के साथ, तो सबकी मेहंदी रचाई गई थी पैरों में हाथ में, तो वहाँ पर मेहंदी शिला भी है, भाव विभोर होकर शिलाएं पिघलती है। ऐसा भी हमने सुना है संतों से कि जब राधा रानी मेहंदी रचाती है तो कभी कभी किसी कारण रूठ जाती है, तो लगा ये मेहंदी से पत्थर में गुस्से से कभी कभी बालिकाएं जब रोता था तो हाथ ऐसे घिसते हैं शिला पर, तो उनकी वो दिव्य भावना से भी कुछ शिलाएं वहाँ बनी हुई है। अभी सब लुप्त हो गई हैं, लेकिन वो भी उस प्रकार की मेहंदी शिला भी है, और एक प्रकार की शिला है कि राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान दोनों पैरों में मेहंदी श्रृंगार करके जब एक शिला पर फिसलते हैं, फिसलिनी शिला, तो वो एक जगह जाके समाप्त होती है, जाके ऐसे पैर लग जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मेहंदी के चिन्ह हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थली है। उसके बाद में एक जगह है जहाँ पर ललिता सखी ने सभी सखाओं को दूध दही आरोगा था, उसको 56 कटोरा कहते हैं, वो भी पत्थर में बना हुआ है। यहाँ सखी गिरी पर्वत राधा रानी और सखियों का कृष्ण के साथ लीला का बहुत प्रिय स्थल है, सखीगिरी बहुत प्रिय स्थल है। उसमें सखी कूप भी है, जब बाल बाल लीला करके खेल के थक गए थे तो उनको प्यास लगी थी, तो सखी कूप से ललिता देवी ने उनको जल पिलाया था। अब मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग हाँ हाँ करते जा रहे हो, लेकिन आप विचार नहीं कर रहे हो कि पत्थर में कुआं कैसे आ गया। कुआं कहाँ होता है? जमीन में होता है, लेकिन भगवान के धाम में भगवान पत्थर में भी कुआं बनाते हैं। जैसे वृंदावन में मदन मोहन जी के पर्वत पर हम मीठे पानी का कुआं बनाया सनातन जी गोस्वामी महाराज के लिए। ऊँचे राधा रानी के पहाड़ पर दानगढ़ पे भी एक ललिता कूप है। जब रास में ललिता जी प्यासी हो गई तो कृष्ण ने वहाँ पर मुरली से कुआं बनाया था, वो भी पत्थर में है। ऐसे कई चमत्कारिक स्थितियाँ हैं, यहाँ पर भी वैसे चमत्कार हैं। पत्थर में कभी कुआं नहीं खोदते हैं, वहाँ पानी निकलता नहीं है। ठाकुर जी की इच्छा होती सब जगह पानी निकलता है। आज भी वो सनातन गोस्वामी का जो कुआं है ना, उसमें भी भर भर के मीठा पानी निकलता है। सब यात्री आके पीते रहते, अभी समाप्ति नहीं होता है। स्नान भी करते हैं, पीते भी हैं, फिर भी मीठा पानी का अनंत स्रोत है उस पत्थर के अंदर। और इतना ही ऊंचा है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है। कहाँ से पानी आ रहा है पता है आपको? किसी को पता नहीं। पता है भी, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से बन रहा है, ये सबको पता है। लेकिन शास्त्रीय जो हमारा साइंटिस्ट लोग जो बहुत टिमके मारते हैं ना कि हम इतना जानते हैं, वो जानते हैं, वो इसको समझा नहीं सकते हैं। ठाकुर जी की लीला को समझ नहीं सकते हैं। किसी भी भौतिक बुद्धि से ठाकुर जी की कोई भी लीला हम समझ नहीं सकते हैं। जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो सब समझ में आता है। वो दिव्य बुद्धि है, सद असद विवेक बुद्धि वो ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सखी गिरी पर सब लोग श्रृंगार करके आए और बहुत क्रीड़ा की। उसके बाद में वो श्रम हो गया उनको, तो श्याम सुंदर जी सब सखियों को लेकर आया, यहाँ आए और जल केली किया तो सब शांत हो गए और उसी से देह कुंड की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर राधा कृष्ण ने स्वयं अपना देह दान किया है, ये बहुत प्रसिद्ध स्थली है। और वृंदावन के कई गोस्वामियों की ये कई पीढ़ियों की प्रसिद्ध तपस्थली है। हमारे परिचय के कुछ गोस्वामी हैं, राधा वल्लभ जी के हैं, राधा रमन जी के हैं, उन्होंने यहाँ पर तप किया है। हाँ, राधा वल्लभ जी के गोस्वामी के तीन पीढ़ी के पहले गोस्वामी ने यहाँ पर आके बहुत दीर्घ काल तक तप किया है। तो ये सिद्ध स्थली है, यहाँ पर नित्य लीला चलती रहती है ठाकुर जी की। और जो सिद्ध व्यक्ति होते हैं महात्मा जी, वो सब नित्य यहाँ पर दर्शन करते रहते हैं, उसी पर ध्यान करते रहते हैं। हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग सिद्ध तो है नहीं, जो साधना कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन श्रद्धा से श्रवण करने से ठाकुर जी की कृपा होती है। इसलिए हमें श्रद्धा से श्रवण करके, पढ़ के, संतों से समझ बूझ के, उसी भाव से ना समझे फिर भी श्रद्धा से उस पर चिंतन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, तब सभी श्रद्धालुओं को कृपा होती है। यहाँ पर एक उच्च श्रेष्ठ संत का जन्म हुआ है, जो नारायण भट्ट जी नाम से जाने जाते हैं, जिनका जो नारद मुनि जी के अवतार है, और वो कुछ 400 वर्ष पहले उनका यहाँ पर जन्म हुआ था इसी गांव में। और वो जैसे गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी गोस्वामी हुए हैं, उन्होंने दक्षिण ब्रज का संवारा है, दक्षिण ब्रज को, जैसे कि 7 मंदिर वृंदावन में बनाए हैं, वहाँ से जितने भी स्थान हैं वहाँ के। नारायण भट्ट जी ने उत्तर ब्रज का संवारा है। जब नारायण भट्ट जी प्रकट हुए थे तो यहाँ पर ब्रज लुप्त हो गया था, तो उन्होंने लाडली लाल जी के विग्रह प्रकट किए, जो स्वप्न दिया राधा रानी ने उनको, तो स्वप्न में दिखाया जाके कि मैं यहाँ हूँ। तो दूसरे दिन उन्होंने फिर सभी संतों को, ब्रजवासियों को इकट्ठा करके लाडली लाल जी के विग्रह वहाँ प्रकट किए। कल मैंने आपको बताया था वो विग्रह किसने बनवाए थे, वज्रनाभ जी ने लाडली लाल के विग्रह बनाए थे। समय के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार लुप्त होते रहते हैं। तो नारायण भट्ट जी के माध्यम से फिर कलयुग में उनको अभी 400 साल पहले फिर दोबारा प्रकट किया गया, तो प्रकट स्थली भी वहाँ पर है। फिर बहुत अनोखी बात ऐसी है कि राधा रानी की सहेली ललिता जी का रेवती जी के साथ बड़ा स्नेह था। रेवती जी बड़ी उनकी प्रिय सहेली थी, और रेवती जी का विवाह जब बलराम जी से हुआ, बड़ा दिव्य वर्णन उसका गर्ग संहिता में आता है बलभद्र खंड में। तो उस विवाह के पश्चात अपने पति के साथ रेवती जी बलराम जी के साथ यहाँ आई थी और ललिता जी के साथ रही थी। तो उनका भी यहाँ निवास स्थान जो है वो रेवती बलराम जी दाऊ जी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये विग्रह भी नारायण भट्ट जी ने बनवाए थे और वो भी काल के अनुसार लुप्त हो गए थे। तो वहाँ पर मंदिर के पीछे आप देखेंगे हींस की झाड़ी है। हींस की झाड़ी बड़ी पवित्र है, बहुत दुर्लभ है दिखने के लिए ब्रज में अभी, और बड़ी पवित्र है। लेकिन अभी भी रेवती बलराम जी के मंदिर के पीछे अभी भी विस्तार रूप में हींस की झाड़ी है। तो वो हींस की झाड़ी मतलब नाम है झाड़ी का हींस। छोटे छोटे पत्ते होते हैं और बहुत घना उसका क्या कहते हैं उसको, मंडप जैसा होता है। हाँ हाँ विस्तार ऐसा बहुत घना होता है। ऐसे हमारे जो जमीन है ना भक्ति विद्यान अस्पताल की, उसके पास भी इसकी झाड़ी है जो हमने वहाँ पर देखी, उसको हम संवार रहे उसको। तो उसी के झाड़ी में, उसी झाड़ी में नारायण भट्ट जी ने रेवती बलराम जी के विग्रह प्रकट करवाए दोबारा, जो उस मंदिर में विराजमान है। फिर नारायण भट्ट जी की समाधि है ऊपर, थोड़े से टील पर जाएंगे तो नारायण भट्ट जी का सुंदर, अब जाएंगे इतना दिव्य वातावरण है उधर, बहुत सुंदर सघन वृक्षावली भी है। और जब कृष्ण भगवान थे यहाँ पर, मैंने दो कथाएं पढ़ी है उसकी, जब कृष्ण भगवान यहाँ पर थे तो सब सखा सखियाँ सब आई यहाँ पर, और कुंभ मेला की बात चल रही थी। तो कुंभ मेला तो सत्ययुग की कथा है ना, भगवान द्वापर में कथा लीला कर रहे हैं, सत्ययुग में कुंभ मेला लीला सब हुई है ना। तो कुंभ मेले का समय था तो सब ग्वाल बाल कृष्ण से मिले, बोलो अरे हम तो कुंभ मेला जा नहीं पाएंगे, तो बहुत दूर है वाराणसी में, कौन जाएगा, आप यही प्रकट करा लो उसको, हम यही दर्शन करना है। तो भगवान की दिव्य कृपा से गंगा जी यमुना जी और सरस्वती देवी सबके आंखों के सामने प्रकट हुई और ऐसा मिलन हुआ उनका। और मिलन होने के बाद वो एक कुएं में चली गई, तो वो कुआं भी उधर है,
त्रिवेणी कूप
उसका नाम है। आज भी यहाँ पर लीला ऐसी, जब कुंभ मेला होता है, अभी देखो ब्रजवासी बताएंगे आपको क्या होगा। हाँ जनवरी में अभी कुंभ मेला है, इस साल नहीं अगले साल, मतलब 2025 जनवरी में कुंभ मेला है। वैसे हर साल माघ मेला लगता है त्रिवेणी पे, लेकिन कुंभ मेला पे कहते हैं यहाँ पर वो कुआं को बाढ़ आती है और कुआं का पानी बढ़ के बाहर आ जाता है। सारे ब्रजवासी लोग जो है उनको कुंभ मेला जाने की जरूरत ही नहीं है, कुंभ मेला भगवान ने उनके लिए प्रकट किया है, ये बहुत विशेष बात है। ब्रज में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो विश्व भर में नहीं है, और विश्व भर का कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो ब्रज में नहीं है। सारे तीर्थों ने, जो भी तीर्थ कहलाने के योग्य है, वो सारे तीर्थ महापुरुषों ने ब्रज में आश्रय लिया है। तो त्रिवेणी संगम महापुरुष ने दो जगह आश्रय लिया है, एक जगह यहाँ पर है त्रिवेणी कूप, और कौन सा है पावन सरोवर। प्रयाग जी आते हैं अक्षय तृतीया को स्नान करने के लिए, वहीं पर आश्रय लेते हैं, वहां पर तो आते हैं और जाते हैं, यहाँ पर तो विराजमान है, यहीं रहते हैं। तो उसका भी आप दर्शन करेंगे थोड़ा संभाल के, हाँ बहुत गहरा है कुआं। तो ऐसा है, ये ललिता जी का धाम है, ललिता जी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण की लीला करते हैं। उनकी सेवा है तांबूल की सेवा, वैसे बहुत सारी सेवाएं उनके पास, लेकिन प्रधान सेवा तांबूल की सेवा है। जब भी किसी मंदिर में ललिता विशाखा जी के साथ में ठाकुर जी के विग्रह को स्थापन करते हैं तो ललिता जी के हाथ ऐसे रहते हैं, और हाथ में क्या होता है तांबूल यानी बीड़ा बनाते हैं। आज भी श्री जी के दरबार में एक ऐसा कमरा है, उधर दिन भर बीड़े बनते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े ऐसे खड़े एकदम त्रिकोणीय से समोसा जैसे होते हैं, ऐसे बहुत सुंदर दो बड़े बड़े चांदी की पेटी में ऐसे खड़े रहते हैं और बदलते रहते हैं उसको। जो बहुत सारे किसी को प्रेम होता है गोसाई के ऊपर, गोसाई को किसी को प्रेम होता है तो उसको वो सबके साथ में एक छुपा के एक बीड़ी दे देते हैं विशेष लोगों को। तो वो ललिता जी की सेवा है। बीड़ा जो बनता है सेवा में भगवान के, गोविंद बीड़ा कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में, गोविंद बीड़ा, यहाँ पर बीड़ी भी कहते हैं, बीड़ा भी कहते हैं, तो महाराष्ट्र में इसको गोविंद बीड़ा कहते हैं, जो विवाह में भी दूल्हे को खिलाया जाता है। तो वो गोविंद बीड़ा भगवान के लिए होता है, नाम ही उसका गोविंद बीड़ा है। तो वो पूरे विश्व में जही भी ठाकुर जी के लिए बीड़ा बनता है वो ललिता जी की सेवा है। हम बोलोग भी बनाएंगे, कभी बनाने की सेवा आएगी तो ललिता जी का ध्यान करके बनाना चाहिए उसको, उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के छत्र छाया में, कृपा छाया में बनाना चाहिए उसी भाव से, जैसे हमारे रसोई में हमें हमेशा यशोदा देवी, राधा रानी, चंपकलता के भाव से ही बनाना चाहिए। उन्हीं की रसोई है, इसी भाव से बनाना चाहिए क्योंकि उन्हीं का आधिपत्य है इन क्रियाओं पर। तो ललिता देवी की प्रधान सेवा तांबूल सेवा है, और दूसरी सेवा है पुष्पों के विषय में। पुष्प उनके आधिपत्य में है सारे पुष्प, और पुष्पों का जो भी श्रृंगार होता है वो सब ललिता जी के नेतृत्व में बनता है। अभी पुष्प का कैसे है, एक होता है वैयक्तिक श्रृंगार, जैसे पुष्प से कान के कुंडल बन सकते हैं, गले का हार बन सकता है। महाराज जरा उसको, पुष्प के गला हार बन सकते हैं, चोकर बन सकता है, बाजूबंद बन सकते हैं, कलाईबंद बन सकते हैं, पुष्प की अंगूठियां बन सकती हैं, कमरबंद बन सकता है, पुष्प की मंदिर में पायल भी बनाते हैं, बहुत सुंदर चरणों का श्रृंगार होता है, ये वैयक्तिक श्रृंगार हो गया। हाँ, और पुष्प के आप मंदिर में जाएंगे तो कभी यहाँ का एक पीस होता है ऐसा छल्ला जैसा होता है, और मुकुट में बहुत सारे पुष्पों के लगाते हैं, हाँ कमर कांचनी, और मुकुट में भी लगाते हैं बहुत सारे पुष्पों के अलंकार, वो पेपर पे उसको बूत के बनाते हैं, बहुत बहुत सुंदर, हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं भक्त लोग क्या क्या बनाते हैं भगवान के लिए। वो शरीर का श्रृंगार पुष्प का हो गया, उसके बाद में बाहर का श्रृंगार होता है। अभी देखो श्री जी में कल गए थे तो बंगला था, फूल बंगला, अधिकतर जो है वो वसंत पंचमी के बाद में फूल बंगला शुरू हो जाता है, वैसे तो साल भर में कहीं भी हो सकता है, लेकिन जब पुष्प आते हैं वसंत की बाहर आती है तो पुष्प निर्माण होते हैं, तो पुष्पों का बंगला जो है ना वो ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है। ठाकुर जी वो बंगला जो है उसको जैसे बनाते हैं उसके प्रवेश द्वार पर बैठते हैं सबको दर्शन देने के लिए, तो वह पुष्प बंगला हो गया। फिर एक होता है पुष्प वितान, जैसे घेवर वन में वो सब लीला है वितानों की, जो भी कुछ सब वितान में है, वितान का मतलब क्या है, कमान, उसको वितान कहते हैं। तो पुष्प वितान बनाते भी है और प्राकृतिक भी होता है, पुष्प शैया होती है वो घेवर वन के अंदर, ठाकुर जी की पुष्पों की संज्ञा शेज होती है, शेज शैया, जहाँ पर रात्रि विश्राम करते हो, रैन बसेरा, सुंदर सुंदर लीला होती है। पुष्प का मंदिर में तो महल बनते ही है, लेकिन वास्तविक भी महल बनाते हैं ललिता जी, विशाखा जी, पूरा पुष्प का महल बनाते हैं उसमें, किसी वन में वृंदा देवी ललिता जी की इच्छा के अनुसार। लेकिन पुष्प का बारे में जो भी होता है वो ललिता जी के नेतृत्व में होता है, पूरा संकल्पना, डिजाइन और क्रियान्वित करना, वो सब कुछ ललिता जी के अंदर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, फूल जो होते हैं ना वो ठाकुर जी के सेवा में बहुत प्रधान स्थान रखते हैं, फूल एक प्रधान वस्तु है जो ठाकुर जी के सेवा में लगते हैं, चरणों में अर्पण करते हैं, सुगंधित फूल नाक के आनंद के लिए देते हैं, सुगंध के लिए अर्पण करते हैं, श्रृंगार को सौंदर्य बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में ठाकुर जी का सौंदर्य फूलों का सौंदर्य बढ़ाता है। फूल जब ठाकुर जी के शरीर पर आते हैं तो फूलों का सौंदर्य बढ़ जाता है, ठाकुर जी तो सुंदर है, सबको सौंदर्य देने वाले हैं, हम समझते हैं कि हम ठाकुर जी को सुंदर कर रहे हैं, वो ठाकुर जी को आनंद देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के ऊपर चढ़ने से फूलों का श्रृंगार बढ़ता है। फूलों के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात है, फूल कहाँ आते हैं, बेली पर आते हैं या वृक्ष पर आते हैं, और वृक्ष कैसे होते हैं, वो अचल होते हैं ना, पादप होते हैं, पादप का अर्थ क्या होता है, जो पैर से भोजन लेते हैं अपना, हम लोग मुँह से लेते हैं वो पैर से लेते हैं, तो पादप नाम है उनका शास्त्र में, और वो अचर सृष्टि है भगवान की, अर्थात वो हम लोग चलने वाले हैं, हम चर सृष्टि है, हम लोग चलते हैं, जानवर पंछी सब मूवमेंट करने वाले हैं, और वो अचर सृष्टि है। तो अगर पेड़ को समझो, गुलाब के पेड़ को इच्छा हुई कि मेरे फूल ठाकुर जी को चढ़ाए जाएं, तो अपने आप नहीं कर सकते हो। तो हम जैसे मनुष्य जो हैं या सेवायत पुरोहित हैं, वो निकालेंगे उसको और वो भगवान को अर्पण करेंगे। तो जब ये फूल किसी पेड़ पौधे बेली से निकल कर कोई किसी के माध्यम से भगवान के चरणों पर अर्पित होते हैं, तो उस पेड़ को अगले जन्म में मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, इसलिए फूल सेवा एक बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि सबसे निचले संवेदना वाला ये वृक्षावली होती है, जो जो पेड़ सृष्टि है भगवान की, वृक्ष सृष्टि है। इसे कहते हैं शास्त्रीय दृष्टि से सबसे अधिक सबसे कम चेतना उसके अंदर होती है। अभी आप काट लो कुछ तो कुछ नहीं होगा, उसको खून नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। हमारा कुछ कटेगा तो हम रोएंगे। उसको इंद्र ने वरदान दिया है सारे वृक्ष सृष्टि को कि जब भी आके कोई अंग को काटेगा आपको कुछ दर्द नहीं होगा। बड़ी लीला है भागवत में उसकी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये फूल की सेवा करना राधा रानी की सखियों का काम है, और जो भी ये फूल सेवा करते हैं उन पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है, क्योंकि उनके हाथों से जो बनता है वो सीधे जाकर भगवान के ठाकुर जी के दिव्य शरीर पर विराजमान हो जाता है। हम देखते हैं कि ये हमने कल बनाया था, अभी देखो छाती की छाती पर विराजमान है, उनका श्रृंगार बढ़ा रहा है, सबको आनंद मिल रहा है, प्रभु जी को श्रृंगार का सुगंध प्राप्त हो रहा है। और पुष्प का एक और काम होता है, क्या है वो? पुष्प अभिषेक। इसमें एक और बड़ी बहुत अच्छी बात है कि हम मंदिर में पुष्प अभिषेक करते हैं, पुष्प महीने में हमारे मंदिर में बहुत धुआंधार अभिषेक होता है पुष्पों का। उसमें अलग अलग प्रकार के रंग के और अलग अलग प्रकार के सुगंध के भारत भर से फूल आते हैं, और वो वर्षा होता है तो मंदिर पूरा ऐसा एक तो सुगंध से भरा रहता है, मिश्रित सुगंध। लेकिन आप अगर ध्यान से कृष्ण की लीला को पढ़ेंगे तो पुष्प वृष्टि और पुष्प अभिषेक ये कृष्ण लीला का एक स्थायी भाव है। जरा सा कुछ भी हो गया तो पुष्प वृष्टि होती है स्वर्ग से। स्वर्ग सारे देवता तैयार रहते हैं, वहाँ के फूल खाली खिलते हैं, मुरझाते नहीं हैं, खाली खिलते हैं बस, मुरझाने का काम ही नहीं है। तो बहुत सारे फूल रहते हैं, हमारे यहाँ फूल होते हैं फिर भी मुरझा के फेंकने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ के फूल मुरझाते ही नहीं है। तो जब भी भगवान, समझो भगवान का जन्म हो गया, फिर समझो पुतना का वध कर दिया, फिर अरिष्टासुर का वध कर दिया, फिर इसका वध किया, फिर भगवान का विवाह हुआ, फिर भगवान रासलीला कर रहे हैं, भगवान नौका विहार कर रहे हैं, भगवान कुश्ती लड़ रहे हैं, जो भी कुछ है, देवता लोग पुष्प का अर्षाव करते रहते हैं उनका। और विशेष रूप से जब भगवान यहाँ से मथुरा गए तो मथुरा की जितनी भी स्त्रियाँ थी उनको देखकर भाग भाग के छत पे गई और अनंत पुष्पों का वर्षाव किया। जहाँ जहाँ से प्रवेश किया वहाँ से रात्रि सोने के विश्राम करने के लिए जब तक गए अपने कमरे में तब तक उनके ऊपर प्रचंड वर्षा होता रहा। उसी के बीच में वो रंगकर्मी का वध हुआ, उसी के बीच में सुदामा माली पर कृपा हो गई, उसी के बीच में कुब्जा ने चंदन लगाया, लेकिन सर्वत्र सब समय पर केवल सुंदर पुष्पों का वर्षा हो रहा था। तो ये पुष्प अभिषेक भी ललिता जी के निर्देश में होता है। कौन से समय, कौन से ऋतु में, कौन से प्रकार के, कैसे फूल किस प्रकार से अर्पण करने, देखो आप ऐसे भी अर्पण कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी अर्पण कर सकते हो चारों तरफ से, या ऐसे उठा सकते हो, हर प्रकार का निर्देश ललिता देवी का होता है। तो पुष्प ये जो विषय है जो भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूरा विषय जो है वो ललिता के आधिपत्य में है। तो हम ललिता जी के बहुत ऋणी है, कृतज्ञ है उनके लिए, क्योंकि ऐसे सुंदर वस्तु जो है उन्होंने अपने जीवन में सेवा के रूप में प्रस्तुत किए हैं। और जो भी रोज लीला में पुष्पों का प्लानिंग होता है, समझो आज अभी ललिता जी भी निर्देश देती है वृंदा देवी को, चलो आज हमें भांडेर में लीला करनी है, तो उसमें कौन से प्रकार के, कौन से रंग के, कौन से गंध वाले फूल निर्माण उपयोग करना है, ये ललिता देवी निर्देश देती है। फिर वृंदा देवी सभी गोपियों को वो सब काम बांट देती है, तुम हले पीले फूल लेके आना, तुम गुलाबी फूल लेके आना, तुम नीले फूल लेके आना, और वो ऐसा भाव देती है सखियों को कि सखियों को अगर बताया जाए कि तुम गुलाबी फूल लेके आना तो उनको गुलाबी फूल के अलावा विश्व में कुछ दिखता ही नहीं है, बाकी सारे सुगंधी रंगी बिरंगी फूल भी होंगे, लेकिन वो सखी को निर्देश मिला है ललिता जी की ओर से, वृंदा देवी की ओर से, तो विश्व में उसको उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि वही उसका कृष्ण का संबंध का एक माध्यम है, उसी के माध्यम से मग्न होकर मुग्ध होकर वो कृष्ण को संबंध करने वाली है। तो अभी वो गुलाबी फूल चुनेगी, फिर वो पूछेगी ना क्या होगा इसका, फिर और सखियों का ग्रुप है वो उनको दिया जाएगा, फिर वो ललिता देवी वृंदा देवी के अनुसार उसकी मालाएं बनाते हैं, उसका सीक्वेंस बनाते हैं, उसके बाद में कौन सा, उसके बाद में कौन सा, इतनी लंबी छोटी हाथ की इसकी उसकी, सारा बड़ा कार्यक्रम होता है, दिन भर चलते रहता है। और फिर कोई और गोपी है जो वो माला जो है वो राधा रानी तक पहुंचाएगी, और राधा रानी अपने हाथ से श्री कृष्ण को पहनाएगी। तो कोई ये नहीं कहेगा अरे मैंने बिने हैं तो मुझे पहनाने दो, मैंने बनाई है, मैंने बुना है उसको, मैं पहना, नहीं कोई नहीं, सब लोग दास 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 अनुदासी हैं, वो केवल आज्ञा पालन करते हैं, कोई डिमांड नहीं है उनकी कि हमें मौका दो। मौका देता है, देनी है तो वृंदा देवी तय करेगी, नहीं मिलेगा तो भी खुशी है, सेवा तो मिली, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। वो सारा जो भाव है केवल सेवा सेवा और सेवा, वो ललिता देवी से निर्माण होता है। अभी देखिए विशेष बात है, राधा रानी बड़ी दयालु है, कृष्ण बड़े कठोर हैं वैसे देखा जाए तो। वो कहते हैं सर्वधर्मम परित्याज्यम, उसके बिना मैं देखूंगा भी नहीं आपको। वो भी ऐसा नहीं कहते आप सब धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ फिर मैं आपको प्रेम दूंगा, ऐसे नहीं कहते हैं। पाप ईश्यामि मोक्ष ईश्यामि मा शुचः, हाँ आपको मैं मुक्ति दिला दूंगा, प्रेम की बात नहीं करते वो, ऐसे है वो अनन्याश्चिन्तयन्तु माम, उनको 100% चाहिए। तो कृष्ण को प्राप्त करना बहुत कठिन है, लेकिन राधा रानी के माध्यम से कृष्ण के प्राप्त करना आसान हो जाता है। वो ऐसे दूषित दोषपूर्ण त्रुटिपूर्ण उनको भी स्वीकार कर लेती है, और क्या करती है, ललिता देवी को राधा रानी ने आदेश देके रखा है कि जो जो व्यक्ति भले पापी हो दोषपूर्ण हो और बहुत जन्मों के पाप उनके अंदर हो, लेकिन उनके अंदर एक अगर चिंगारी होगी कृष्ण के प्रति, प्रेम की भक्ति की इच्छा भी होगी, जानकारी भी होगी उसको, श्रद्धा भी इतनी सी होगी, तो उसको आप ले आना, उसको अच्छी ट्रेनिंग देना, उसको अच्छे तरह से जैसा हीरा को करते हैं ना पहलू निकालते ना उसके, क्या आप लोग कहते हैं उसको हीरा को बनाने के लिए, हाँ हमारे यहाँ इसमें पहलू निकालना कहते हैं, मराठी में कहते हैं पहलू, यानी जो वो ऐसा कच्चा होता है तो उसको पूरा ऐसा बढ़िया बना देते हैं। तो वो तरासना जो है वो ललिता देवी करती है। ललिता देवी जा जाकर ढूंढती है कौन अपने मन में कृष्ण के लिए राधा रानी के लिए श्रद्धा रख रहा है, और वो तरास कर उस भक्त को राधा रानी को सुपुर्द करती है। फिर राधा रानी कहती है कृष्ण देखो ये कितना बढ़िया भक्त है, इसको स्वीकार करो। और जब राधा रानी ललिता से तरासे हुए भक्त राधा रानी के हाथ में आकर कृष्ण को प्रस्तुत के जा रहे हैं, कृष्ण को ना भी कहना है तो ना नहीं कह सकते हो, क्योंकि सिफारिश कहाँ से आ रही है, उसका चैनल क्या है, वह चैनल बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम ना सही चैनल के बिना नहीं होता है, उसका हर चीज़ के लिए एक चैनल होता है। प्रधानमंत्री को मिलना है उसका भी एक चैनल है, योगी जी को मिलना है एक चैनल है उसका, हर व्यक्ति का एक चैनल होता है, वैसे ये चैनल है। ये चैनल के लिए यहाँ पर हमको क्या करना है, आके ललिता जी के सामने गिड़गिड़ाना है कि आप हमें स्वीकार कर लो, हम बड़े पतित हैं,
चैनल से बड़े करने के लिए आस्था को परपक रखो।
सो सब लोग प्रार्थना करो कि हम बड़े पतित हैं, हमारे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, कोई अच्छी सेवा नहीं बन पा रही है, लेकिन हम आपको चाहते हैं, इतनी बात तो सही है, और हम कितने भी पुराने जन्म के पापी होंगे लेकिन प्रामाणिक हैं हम, क्या कहते हैं उसको, सिंसियर हैं बहुत, दिल से हम आपको चाहते हैं, आप हमें स्वीकार कीजिए। तो जैसे महाराज जी बता रहे हैं श्रद्धा आस्था ये शुरुआत है हमारी, उसके साथ में हम प्रार्थना करते हैं।
पहला है आस्था, आप लोगों की आस्था महाराज जी के माध्यम बनी, ठाकुर जी ने इस ब्रज में आपको अपने ही अंश में भेजा है मार्गदर्शन को।
तो
दूसरे सूत्र में विश्वास जम जाता है किसके लिए, संत के लिए, कि हमको सही जगह लाए, आलोकिक जगह लीला स्थली है ब्रज, साधारण भूमि नहीं है, यहाँ साक्षात ठाकुर जी विराजे। तीसरे सूत्र में हमारा आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आत्मा का जो रिश्ता है वो परमात्मा के साथ में जुड़ चुका, किसके माध्यम, महाराज जी के माध्यम, कि ये इन्होंने आप सब बच्चों का हाथ पकड़ करके डायरेक्ट गोविंद के हाथ में दे दिया, प्रभु इन बच्चों का हाथ में आपको दे रहा हूँ, इनका जीवन कृतार्थ करो, संबंध के बाद में बेटा श्रद्धा उत्पन्न होती है, मुझे किस लायक पात्र बनाया है, क्या भेंट करूँ प्रभु आपको, तन मन धन यथाशक्ति क्या महाराज जी को करूँ। श्रद्धा के बाद में भक्ति का अंकुर फूटता है, भक्ति माँ है, परमात्मा पिता है, माँ बाप का मिलन होगा, संतान पैदा होगी, फर्स्ट पुत्र होगा ज्ञान, दूसरा होगा वैराग्य, इमीडिएटली वैराग्य, विवेक के द्वारा, वो वैराग्य या तो संसार में होता है या देव स्थान में होता है। वैराग्य के बाद सीधा जीव समर्पण करता है। नौवा जो सूत्र है उसका नाम है बेटा अथवा ब्रह्म। अथवा ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में जो अंधकार की दीवार है वो नष्ट हो जाती है। कब? जब ठाकुर जी कृपा करे तब हम कृपा पात्र बने। तब किसके माध्यम? फिर रिटर्न आएंगे नहीं, संत पे आना पड़ेगा। इनके माध्यम अभी महाराज जी ने बोला है 2 सेकंड पहले कि पावन का स्वरूप। यहाँ नहीं तो आपको नंदगाम ले जाएंगे, नंदगाम नहीं तो ये वृंदावन ले जाएंगे, वृंदावन नहीं तो ये गोकुल में पधराएंगे। कहीं तो दृष्टि परमात्मा की पड़ेगी, प्रभु की, जो हमारा जीवन सफल होगा। ठाकुर जी बेटा ऐसे मिले, समझ गए?
ठीक है,
सीधी बात, सीधी चढ़ो, छलांग मत लगाओ। और
महाराज जी थोड़ा मुझे बोल, कुछ मेरा निवेदन कर रहा था उनको मैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है, कोई बात नहीं, अच्छा है। तो सबसे बड़ा है नम्र भाव। संत संत कहते हैं कि जब ब्रज में आप आते हो तो शहर का रजोगुण तमोगुण छोड़ के आया करो, वहाँ के हमारी पहचान, हमारी कीर्ति, हमारा यश जो है वो सब छोड़ के आया करो, सत्वगुण को यहाँ पर परवरिश करो, और उस सत्वगुण से साथ फिर श्रद्धा के साथ ठाकुर से साथ जुड़ने का प्रयास करो। संत लोग बताते हैं कि बिना संत के सत्संग से ठाकुर जी का परिचय ही नहीं होता है, श्रद्धा ही निर्माण नहीं होती है। जब संत का परिचय होता है बड़े भाग्य से, बड़े पिछले जन्मों के सेवा के पुण्य के माध्यम से, तब फिर भगवान के विषय में रुचि उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है। तभी आप बड़े प्रेम से, श्रद्धा से इधर उधर ना भटकते हुए सबका दर्शन करो। देह कुंड है, त्रिवेणी कूप है, महाराज जी की समाधि है, बलराम जी का मंदिर है, दर्शन करो और प्रार्थना करो, और जो आपकी श्रद्धा है ब्राह्मणों को, गोस्वामियों को दे दो, और फिर प्रसाद के लिए जाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।